सेवा रेडियो की प्रस्तुति।
सुनो गजर क्या गाए,
गजर की तरह विशिष्ट अंदाज में अपनी आवाज के साथ बिलासपुर वासी,
बिलासपुरियन की आवाज।
नमस्कार, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू आर वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं लंकिता हाजिर हूँ लेकर साल के पहले दिन गजर में बिलासपुरियंस की आवाज। नया साल है, नया उत्साह है, नया जुनून है और सब कुछ नया नया है। और इसी नए जोश के साथ मेरी बातचीत हुई हमारे बिलासपुर के सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ताओं से। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल अपने बारे में ना सोचकर पूरे शहर के बारे में सोचते हैं। तो चलिए हम भी इनकी बातें सुनते हैं और इनकी बातें सुनकर इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं और प्रेरणा लेते हैं। इसी सिलसिले में सबसे पहली बातचीत मैंने की रोमो एनजीओ के फाउंडर की। तो चलिए सुनते हैं इनकी आवाज।
मेरा नाम अश्विन विश्वकर्मा है, मैं रोमो वेलफेयर फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। और अपन 3 साल से बिलासपुर में लगातार काम करते आए लॉकडाउन में, और लॉकडाउन के पहले भी अपना एनजीओ स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है।
अच्छा,
अपनी एनजीओ की शुरुआत हुई 2020 में नवंबर में। ठंड का ही मौसम था तो अपन सोचे थे कि कुछ गरीब जरूरतमंदों को घर के जो हमारे कपड़े होते हैं, पुराने कपड़े, उनसे शुरुआत करते हैं देने की। तो उस तरह से हमारी जो एनजीओ की शुरुआत हुई थी।
अच्छा, तो आपको ये आइडिया कैसे आया संजीव की रोमो एनजीओ स्टार्ट करना चाहिए?
ना जो था मोटिव कुछ करना है, क्या है कि मुझे बहुत जानवरों से प्यार है। तो अपन ऑलरेडी अपने क्या बोलते हैं गली के कुत्तों को, बच्चों को रख लेना या फिर खाना खिलाना तो चलता था। तो सोचे कि अब शहर के भी कुत्तों के लिए कुछ किया जाए। तो फिर कहा शुरुआत से पहले जैसे ठंड का समय है तो जगह तो दिखे, तो हमने शुरुआत वहाँ से की थी। बाकी हमारा काम है जो जानवरों के लिए काम करते।
तो क्या रोमो एनजीओ सिर्फ जानवरों के लिए काम करता है?
नहीं, सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, अपना मेन मोटिव जानवरों के लिए है। और अपना जो है क्या बोलते हैं जरूरतमंदों के लिए भी हम काम करते हैं। दीपावली उपहार हो गया या क्रिसमस हो गया, छोटे गरीब बच्चों के लिए भी हम काम करते हैं।
अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है सर, बहुत ही अच्छे नोबल कॉज को लेके आप आगे चल रहे हैं। सर मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि अभी तक रोमो एनजीओ ने क्या क्या काम किया है, कुछ बताइए।
हाँ, अपना 3 साल से एक अडॉप्ट मी करके अपनी मुहिम चल रही है जो बिलासपुर में अभी तक होते आई है, जिसमें अपन स्ट्रीट डॉग के बच्चों को अडॉप्ट करवाते हैं। मैं नेटो मॉल में होते आया है 3 साल से, और इस साल भी शहर में होने का है बिलासपुर में। और साथ ही नए साल में अपन लोग गुजारिश करके इवेंट जैन में करवाने वाले हैं, जयपुर मरीन ड्राइव में। अब इस साल से अपन अपना एनजीओ को रायपुर में भी शिफ्ट हो चुका है कि यहाँ भी काम चालू है।
अच्छा, तो ग्रोम वर्क के नए साल की प्लानिंग है गुजारिश।
जी, गुजारिश एक अडॉप्शन कैंप है और साथ ही लाइव म्यूजिक वगैरह भी इसमें होगा और कुछ वर्कशॉप वगैरह भी आएंगे।
अच्छा, तो सर कुछ इस इवेंट के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए और हमारे श्रोताओं को।
ये जो इवेंट रहेगा इसमें अपन लोग 6 और 7 को मरीन ड्राइव में ऑर्गेनाइज होने वाला है, जहाँ पे अपन लोग रायपुर के कुछ स्ट्रीट डॉग्स के पपीज को वहाँ पे अडॉप्शन के लिए रखेंगे। साथ में वहाँ पे और लोग आए और लोगों के आने की वजह भी होनी चाहिए, इसलिए हम वहाँ पे लाइव म्यूजिक हो गया, साथ में कुछ वर्कशॉप भी कंडक्ट करेंगे हमारी टीम के साथ में। ये 6 और 7 को 2 दिन शाम को होगा।
अच्छा, बहुत ही बेहतरीन आइडिया है सर ये तो। और मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि नए साल में आप लोग नया क्या कर रहे हैं, और आपने मुझे खुद ही बता दिया कि नए साल की आपकी नई प्लानिंग कितनी जोरदार चल रही है।
जी जी बिल्कुल
सर। इसके साथ और आप क्या प्लान कर रहे हैं कि नए साल में और किस तरीके से आप काम करेंगे?
नए साल में तो अभी इसके बाद इस इवेंट के साथ में हम एक फंडराइजिंग वहाँ पे करेंगे, चाय का और कुछ बेकरी के स्टॉल हमारे होंगे, जिससे अपन जानवरों के लिए छोटे शेल्टर बनाएंगे। जैसे कि जो सीमेंट के पाइप होते हैं उसमें डट्टे रखते हैं, और इस पैसों से अपन फीडिंग करेंगे इस साल में कुत्तों को।
बहुत ही अच्छा मुहिम सर, बहुत ही अच्छा कदम उठाया है आपने। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी बातें सुनकर हमारे जो बाकी श्रोता है उनके मन में भी ये ख्याल आएगा कि उनको भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए।
जी बिल्कुल
सर। तो 2020 की बात हो रही है, उस वक्त क्या पढ़ाई कर रहे थे, क्या से पढ़ाई हो चुकी थी जब आपने एनजीओ की शुरुआत की?
उस वक्त मैं 10th में था।
अच्छा,
पढ़ाई में चल रही थी और साथ ही मैं अपने और दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स वगैरह थे अपने कुछ वगैरह, तो हम मिलते ही शुरुआत किए थे।
अच्छा,
जब आप क्लास 10 में थे यानी कि तो बहुत छोटी ही क्लास होती है और इसमें तो बच्चों को अपने बोर्ड वगैरह का भी सेशन होता है बहुत, तो इस वक्त फिर आपको एनजीओ का ख्याल, मतलब एनजीओ के बारे में आपको पता था कि एनजीओ क्या होता है, या आपने किसी को देख के इस चीज की प्रेरणा ली?
नहीं, मुझे ऐसे कुछ नॉलेज थी इसके बारे में, थी मैंने शुरू बात की थी, सिर्फ अच्छा काम करना यही सोचती थी, फिर बाद में वो एक एनजीओ में कन्वर्ट हो गया और वैसा काम चालू हो गया। मुझे वहाँ जब जिस लाइन में घुसे तो पता चला कि एनजीओ होता है या क्लास में और भी एनजीओ है, उसके काम कैसे होते हैं, वो बाद में पता चला।
अच्छा, आप हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगे अंकु?
जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके आसपास जो बेजुबान कुत्ते हैं या बिल्लियां हैं उन्हें घर से कुछ रोटी खिला दीजिए या फिर उन्हें पत्थर वगैरह मार के भगाइए मत, वो सिर्फ कुछ खाना मांगने आते हैं आपसे, वो और कुछ नहीं चाहते, तो बेवजह उन्हें मारिए ना, और हो सके तो कुछ खिलाड़ के ठंड का समय है कुछ ओढ़ने को या फिर कुछ सोने के लिए उनको व्यवस्था कर दीजिए, थोड़ा हम सब मिलकर करेंगे तो ही इनके लिए कुछ हो पाएगा, ये हम पे डिपेंड रहते हैं, ये खुद कमा तो सकते नहीं है, तो हमारे भरोसे तो हमें इनका ध्यान जरूर रखना चाहिए।
बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी श्रोता आपकी बात से सहमत होंगे और वो भी इस चीज को करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर।
धन्यवाद आपका।
अश्विन विश्वकर्मा जी से बात करने के बाद मैंने बात की डिवाइन ह्यूमैनिटी के फाउंडर सक्षम अग्रवाल जी से, तो चलिए सुनते हैं उनके एनजीओ के काम करने का तरीका।
सबसे पहले आपको अर्पण रेडियो की ओर से हैप्पी न्यू ईयर।
थैंक यू अलंकृता, आपको भी मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।
सबसे पहले आप हमें और हमारे श्रोताओं को आप अपना और अपने एनजीओ का परिचय दे दीजिए, ये मुख्य किस उद्देश्य पे काम करता है?
जी, हम मेनली बच्चों के डेवलपमेंट पे काम करते हैं, मतलब क्या है, बच्चे जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, और देश की अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो आगे पूरा देश मजबूत होगा, तो हम बच्चों को किसी भी फिजिकल और मेंटल प्रॉपर तैयार करते हैं।
अभी तक डिवाइन ह्यूमैनिटी क्या क्या कुछ काम कर चुका है उसके बारे में हमें बताइए।
जी, हमारा जो एनजीओ है डिवाइन ह्यूमैनिटी वो सब सेक्टर में काम करता है, हम एनवायरमेंट सेक्टर में भी काम करते हैं, एनिमल्स से भी काम करते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी काम करते हैं, और मेनली जो हमारा काम है अभी हमने बच्चों के लिए शुरू किया है।
तो बच्चों के लिए अभी फिलहाल आप लोग क्या कर रहे हैं सर?
बच्चों के लिए अभी रिसेंटली हमने एक इवेंट कराया था जिसमें हमने उनको अपना सुबह का दिनचर्या कैसे शुरू किया जाए, हमने उस पर उनको गाइडेंस दिया था कि आप मेंटली और फिजिकली आप कैसे फिट हो सकते हैं, हमने उनको योगा कराया, जुम्बा कराया, साथ ही साथ मेडिटेशन कराया, मतलब वो शरीर के स्तर पर और मन के स्तर पर फिट हो सके, इस पे हमने अभी वर्क किया बच्चों पर।
ये बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है क्योंकि बहुत ही जरूरी है कि हमारे देश के बच्चे तन और मन दोनों से स्वस्थ रहें।
राइट राइट,
बिल्कुल। ये एनजीओ की शुरुआत आपने कब की और आपको ये आइडिया कैसे आया कि एक ऐसा एनजीओ होना चाहिए जो इन मुद्दों पे काम करे?
जी, मैंने एनजीओ की शुरुआत 2019 पे की थी, जब मेरा 12th हुआ था तो मेरे मन में एक अचानक थॉट आया था कि अगर हम इस देश में रह रहे हैं तो हमें सोसाइटी के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, तब फिर मेरे दिमाग में डिवाइन ह्यूमैनिटी को शुरुआत करने का आया, फिर हमने डिवाइन ह्यूमैनिटी कुछ शुरू करना चाहिए जिसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, हमारे लोगों के लिए हम कार्य कर सकें।
मतलब आप जब 12th में थे तब आपने डिवाइन की शुरुआत?
हाँ, जब 12th पास ही हुआ था तब मैंने डिवाइन ह्यूमैनिटी की शुरुआत की।
मतलब काफी कम उम्र में आपने एक अच्छे नोबल कॉज के लिए कदम बढ़ाए।
मैं तो फिर भी मानता हूँ कि मैंने बहुत लेट ही शुरुआत की है, क्योंकि क्या जब से जो मैं देखते आ रहा हूँ कॉज को जल्द ही कर देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है।
बट हम देखते हैं काफी लोग इस एज में जो होते हैं, जो बच्चे 12th 11th वाले होते हैं या पास आउट होते हैं, वो अपनी चीजों में ही जूझ रहे होते हैं कि क्या सब्जेक्ट चुने, क्या पढ़ाई करें, और उस बीच अगर कोई निकल के समाज के लिए कदम बढ़ा रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छी सोच है और अच्छा समय है चीजें शुरू करने का।
बहुत बहुत धन्यवाद अलंकिता जी आपका।
सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि डिवाइन ह्यूमैनिटी ये नाम आपने क्यों चुना?
हर एक मनुष्य में एक मानवता का भाव रहता ही है, फीलिंग ऑफ काइंडनेस रहती ही है, तो वो मतलब रिलेट करते करते मन में आया डिवाइन और ना ह्यूमैनिटी, फिर वो उससे हमने उसको एडवांस कर लिया।
मैं ये जानना चाहूंगी कि नया साल शुरू हो रहा है तो ये नए साल में आप क्या नया करना चाहेंगे अपने एनजीओ के माध्यम से देश के लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए?
मेरा जितना मेरी कोशिश है, मैं जितना हो सके पहले तो जो अवेयर करें हम लोगों को कि मतलब हमारे लिए जो है शारीरिक स्तर पर और मन के स्तर पर फिट रहना बहुत जरूरी है, तो उस पे हमने अभी काम शुरू कर दिया है, और आने वाले समय में भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसपे हम, इतने भी छोटे बच्चे हैं उन्हें हम ये सिखाएंगे कि वो सुबह उठ के अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर कैसे काम करें, और जितना हो सके हम लोगों को अवेयर करेंगे कि आप और फिटनेस की ओर जागरूक हो। और हमारा मेन अभी 2024 के लिए है कि हम जानवरों के ऊपर काम करें। जानवरों के जैसे एक्सीडेंटल केस हैं, एक्सीडेंटल केस आते रहते हैं, या कोई बेसहारा जानवर है, उन पे हमारा भी चल रहा है प्लान, इसके लिए हम कर रहे हैं प्लान। तो ये हमारा भी 2024 का आने वाला अभी का जो भी है लेआउट है।
बहुत ही बढ़िया तरीके आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में भी समय दिया और हमारे लोगों को इतने एनजीओ के बारे में, और एक मोटिवेटिंग बात आपने कही है कि सबको अपने तन का मन का ध्यान रखना चाहिए और अपने साथ साथ आसपास की सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए भी सोचना चाहिए।
मैं आपका और आप पूरे अरबा रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे स्टेशन पे इनवाइट किया।
बिल्कुल शुक्रिया सर।
तो बिलासपुर में और भी कई एनजीओ हैं जो लगातार प्रयासरत है हमारे बिलासपुर को बेहतर बनाने में। इसी सिलसिले में मेरी अगली बातचीत हुई दहली फाउंडेशन की फाउंडर हीना खान जी से। तो चलिए सुनते हैं उनसे उनके एनजीओ के बारे में और उनके बिलासपुर को बेहतर बनाने की कोशिश के बारे में।
नमस्कार, मैं हीना खान, दहली फाउंडेशन के संस्थापक। और दहली फाउंडेशन एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो करीब 5 सालों से, हमें अब हमारी संस्था को 5 साल होने वाले हैं, 5 सालों से बच्चों की शिक्षा के लिए और महिलाओं की स्वास्थ्य के लिए और रोजगार योजनाओं पर भी हम कुछ कुछ काम करते हैं। तो इसी तरह हम काफी समय से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में जो खामियां हैं उन चीजों को करने के लिए हम काम कर रहे हैं।
बड़ा ही अच्छा काम आप कर रही हैं हीना जी। और मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि ये दहली फाउंडेशन की शुरुआत करने का ख्याल आपके मन में कैसे आया?
तो ये जो ख्याल है वो इस तरह से आया कि मैं स्कूल में ही थी, बहुत छोटी एज में थी मैं, तो मुझे जो समाज में जो प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, मैं बच्चों को देखती थी, मैं घर से स्कूल ट्रैवल करती थी, तो मुझे इन चीजों को देखकर थोड़ा सा प्रॉब्लम सा फील होता था, अच्छा सा नहीं लगता था कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे हैं, हर किसी की लाइफ अलग अलग थी। तो उन चीजों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे शायद हमें कुछ योगदान करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि समाज में हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने ही देश को अपना परिवार समझना चाहिए और उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये जो थॉट है, ये इंस्पिरेशन है, ये प्रॉब्लम से आई थी कि प्रॉब्लम देखकर तो मैं इन प्रॉब्लम्स का सलूशन करना चाहती थी और आज भी मैं वही कर रही हूँ।
जी हिना जी, ये एक बहुत ही अच्छी सोच है कि आपने सोचा कि आपको प्रॉब्लम का सलूशन बनना चाहिए। वरना अक्सर हम देखते हैं कि लोग प्रॉब्लम गिनाते हैं और उसके लिए किसी न किसी को कसूरवार ठहरा देते हैं।
सर है,
और इस समाज में किसी और को कसूरवार ना ठहरा के खुद को सलूशन बनाना, ये काफी अच्छी सोच है।
जी बिल्कुल, यही ख्याल मेरे मन में है और बस उसी को ही मोटिवेशन बनाकर मैं हर दिन काम करती हूँ।
जी हिना जी, तो ये दहली नाम भी तो आपने सुना?
दहलीज नाम इसलिए चुना कि हम दहलीज को एक वो दरवाजा, वो द्वार समझते हैं जहाँ से हम हजारों लाखों सपनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो बच्चे जो किसी न किसी कारण से उनके सपने रुके हुए हैं या वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए वो दरवाजा है जो अपने सपनों की तरफ उड़ान भरेंगे।
काफी अच्छा और सफल प्रयास आपका मैं देख पा रही हूँ समाज को एक बेहतर दिशा देने में। और नए साल के उपलक्ष्य में आपसे बात कर रही हूँ हीना जी, तो नए साल की बहुत बहुत बधाई है आपको।
आप बहुत बहुत बधाई।
शुक्रिया। और ये जानना चाहती हूँ कि दहली के माध्यम से आप नए साल में क्या नया करने की सोच रही हैं?
बिल्कुल, जैसे नया साल है और आज ही से ही हमने इनिशिएटिव चालू कर दिया है, लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया है, दहलीज में फॉर्म्स भी आ चुके हैं, जिन्हें भी मेंबर बनना है वो मेंबर बन के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब आगे का जो हमारा प्लान है वो इस तरह से है कि जैसे दहलीज में कुछ स्कूल अडॉप्ट किए हुए हैं तो वो टारगेट्स हमें बढ़ाने हैं। अगर हमने 5 किए हैं तो अभी 10 करने हैं हमें। जो बच्चे हमने अडॉप्ट किए हैं, अगर हमने 5 से 6 अडॉप्ट किए हैं तो हमें उसे 15 से 20 करना है। ऐसे बच्चों को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं। मैं चाहूंगी कि दहलीज पर्यावरण पर भी काम करे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं, तो हम चाहेंगे कि इस साल हम बहुत सारे प्लांट्स भी लगाएं दहलीज के मेंबर्स के थ्रू, और इसके साथ साथ कुछ हम एम्प्लॉयमेंट पे भी दहलीज इस बार काम करने की बिल्कुल प्रयास में है। और एजुकेशन को हम जितना ज्यादा बढ़ा सकें अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू, इवन हम बच्चों के पेरेंट्स को भी अवेयर करेंगे, उनकी कुछ न कुछ वर्कशॉप लेंगे। तो इस तरह से दहलीज अब लगातार शिक्षा के लिए काम करने को आगे बढ़ चुके हैं। ट्यूशन क्लासेस लगाई जाएंगी, बच्चों को अच्छी से अच्छी जगह में पहुंचाया जाएगा। ऐसे बच्चे जो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं वो रुके हुए हैं, दहलीज उनका हाथ थामेगा और उनको आगे बढ़ाएगा।
ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही आपने, और आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं और उन सारी समस्याओं पर काम करना बहुत ही जरूरी है
जी,
और सबके लिए आप सोच रही हैं। और अगर हम कम शब्दों में कहें तो आप खुशियां मल्टीप्लाई करने के बारे में सोच रही हैं इस नए साल में।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल
जी, बहुत ही बढ़िया है मेरी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, और मैं आशा करती हूँ कि बिलासपुर शहर के लोग बढ़ चढ़ कर आपके इस अच्छे काम में हिस्सा लेंगे, आपको सहयोग करेंगे, और अर्पा रेडियो भी आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़ा है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरह से ही हमें लोगों का सपोर्ट मिलता रहा है और मैं उम्मीद करूंगी कि हमें मिलेगा, क्योंकि जैसे कहावत है ना कि साथी हाथ बढ़ाना, तो जैसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और लोग हमारे हाथों में हाथ मिलाकर हमारे साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा।
बिल्कुल, और आप बच्चों के लिए काम कर रही हैं, और कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।
बिल्कुल बिल्कुल,
शुक्रिया हिना जी।
हिना खान जी ने तो बड़े ही बेहतरीन तरीके से अपने एनजीओ के बारे में बताया, और ये भी उन्होंने मैं आपको समझाया कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इसके बाद मेरी बातचीत हुई अरुण साहू जी से, ये किस एनजीओ के संस्थापक हैं और किन मुद्दों पे इनका एनजीओ काम करता है, आइए सुनते हैं इनकी आवाज़ में।
सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए वर्ष का।
शुक्रिया सर। सर हम बात कर रहे हैं हमारे बिलासपुर के सोशल वर्कर से।
जी जी,
आपके एनजीओ का भी एक नाम है जो कि बहुत सक्रिय होकर बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों के लिए काम कर रहा है। तो सर सबसे पहले आप अपना परिचय और अपने एनजीओ का परिचय दे दीजिए।
जी, मेरा नाम अरुण कुमार साहू है और मैं फाउंडर मेंबर हूँ दीनबंधु सहयोग संस्था का, जो कि हमारी संस्था बेसिकली बिलासपुर से पंजीकृत संस्था है। और बस बिलासपुर बस में नहीं बल्कि हमारी संस्था जो है राजनांदगांव, बैकुंठपुर, मुंगेली और बिलासपुर में भी हमारी संस्था चलती है। हमारी संस्था गठन हुआ था 2019 से हुई है, 2019 से लेकर अभी तक हमारी संस्था चलती आ रही है समाज सेवा के लिए।
जी सर, तो आपकी संस्था का रजिस्ट्रेशन वगैरह हो?
जी जी,
2019 में जब ये संस्था की आपने शुरुआत की सर, आपको ये आइडिया कैसे आया कि इस प्रकार की एक संस्था होनी चाहिए?
जी एक्चुअली मैं एक एनएसएस वॉलंटियर हूँ राष्ट्रीय योजना का, आप इससे भली भांति परिचित होंगे
है
ना। तो पिछले 11th क्लास से 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से करते करते मैं राष्ट्रीय योजना से बहुत पहले से जुड़ते आया हूँ। तो एक सोशल वर्क फील्ड में काम करना उसमें पैशनेट होना है, शुरू से हम लोग की रुचि रही उस फील्ड में। तो कहीं ना कहीं जो संस्था ओपन करने की जो हमको प्रेरणा वो राष्ट्रीय सेवा योजना से मिली, जो हर एक स्कूल और हर एक कॉलेज में इसकी यूनिट चलती है। तो इसी तरह हमारे जो 12वीं की पढ़ाई कम्प्लीट होने के बाद हम चौथे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे और तब हम राष्ट्रीय सेवा योजना से इन्वॉल्वमेंट कराए। तब उस समय हम लोग के मन में आया कि हम सब कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं सब मिलकर एक ऐसे संस्था का गठन करें जो राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ साथ यदि कहीं हम लोग और ग्राउंड लेवल हम लोग कहीं रहे तो ग्राउंड लेवल पे हम लोग कुछ काम कर सके, किसी लोगों के लिए हम लोग कुछ कारगर प्रयास कर सके, हम लोग का सबका एक मुहिया था। तो हमारे कॉलेज के मेरे क्लासमेट थे 3-4 लोग, हम लोगों ने सोचा कि चलो ना एक संस्था ओपन करते हैं। तो उस प्रकार से हमारे संस्था को ओपन हुआ था, और संस्था को ओपन करने का मेन उद्देश्य और ये भी था कि एक्चुअली हम उस समय एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में एक भिखारी था दिल्ली का भिखारी, और उसका एक वीडियो कैप्चर किया गया जिस वीडियो में पता चलता है कि पूरा जो सर्कल है उसका पूरा जो बर्ताव पूरा महात्मा गांधी जैसा। तो वो जो एक समाज सेवी संस्था है उसको फिर उसको नहलाते हैं खिलाते हैं, फिर बाद में जब उसको अच्छे एक वेशभूषा के साथ तैयार करते तो टोटली पूरा वो महात्मा गांधी के फेस कट उनका था पूरा। तो उनको देख के पता नहीं मेरे ना दिल में से कुछ लगा कि मतलब हर एक भिखारी एक जैसे नहीं रहती, यदि उनको कहीं हम लोग अच्छा से कहीं खाना कपड़ा या कुछ दे तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उस समय ऐसा कुछ कुछ मन में चला था कि एक संस्था ओपन करनी चाहिए हम सबको मिलकर। तो संस्था शुरुआत नहीं हुई थी, वैसे हमारे संस्था की शुरुआत हुई तो 2018 से भी थी। 2018 में जब संस्था की शुरुआत हुई तो उस समय हमको पता नहीं था कि समाज सेवा क्षेत्र में यदि कोई कोई एनजीओ ऐसे स्टार्टअप करते तो उनका कुछ पंजीयन होता है नहीं होता है। तो धीरे धीरे जब हम लोग ग्राउंड लेवल में काम करना शुरू किए तो लोग हमसे पूछते थे कि आप लोग एनजीओ हो कि एनपीओ हो, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, और ये दोनों चीज से हमारा फिर वास्ता नहीं था, समझ में नहीं आता था कि चीजें हैं क्या। बस हम लोग बस एक संस्था दीनबंधु सहयोग संस्था के नाम से चला के ग्राउंड लेवल पे हम लोग अवेयरनेस कैंपेन हो या तो हेल्थ कैंपेन के थ्रू हम लोग काम करना शुरू किए। लोग धीरे धीरे बताते गए कि हाँ ऐसा पंजीयन होता है आप लोग पंजीयन कराइए। तब जाके हम लोगों ने 2018 में पूरे 2018 भर में काम किए, फिर 2019 के फरवरी माह में 21 फरवरी 2019 को हम लोगों ने संस्था का पंजीयन कराया था।
सर आपने बताया कि एमपी और एनजीओ के बारे में आप लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी और आप लोग भी काफी कंफ्यूज थे इस विषय में, और एनजीओ के अधिकतर लोग होते हैं जो कि इन दोनों चीजों को एक ही मानते हैं, को और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो सर इसके बारे में अगर आप थोड़ा हमें बताएं तो काफी अच्छा रहेगा।
इसमें जैसे कि एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जैसे इसके अलग अलग एक्ट होते हैं। 1973 एक्ट पे समाज सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत होती है, जैसे 1973 एक्ट है, 1960 एक्ट है, उसमें से छत्तीसगढ़ सोसाइटी एक्ट एक है ना, राष्ट्रीय सोसाइटी प्राधिकरण एक्ट एक है, तो उस प्रकार से जितने भी ये सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है ये एनजीओ में आती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और वही जैसे हमारे सेक्शन 25 एक्ट, सेक्शन 8 एक्ट हो गया, या तो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है ना, या तो कोई फर्म्स है, या तो कोई एजेंसी हो सकती है, ये सभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आती है। अब उनके लॉज बायलॉज के अनुसार रहती है कि उनका ऑब्जेक्ट क्या है, इस क्या बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 25 एक कंपनी को स्टार्टअप करने की। जैसे हमारे एक और भी संस्था चलती है सेक्शन 8 पे, दीनबंधु हेल्थ फाउंडेशन, तो बहुत सारे लोगों के इसमें डाउट्स तो रहते हैं कि दीनबंधु सहयोग संस्था दीनबंधु हेल्थ फाउंडेशन लिखी है, तो नहीं, ये गलत है। दीनबंधु सहयोग संस्था हमारे सोसाइटी एक्ट पे पंजीकृत संस्था है जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आती है, और दीनबंधु हेल्थ फाउंडेशन एक हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक सेक्शन 8 कंपनी में आती है। तो ये दो हमारे पास संस्था है, और इसका दो रजिस्ट्रेशन कराने का हमारा मकसद भी यही था कि जैसे कि छत्तीसगढ़ सोसाइटी एक्ट पे हमारे दीनबंधु सहयोग संस्था पंजीकृत हुई है, तो सिर्फ उसमें दीनबंधु सहयोग संस्था के छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के ही वॉलंटियर हमसे जुड़ पाएंगे, और यदि कहीं मैं संस्था को मैं गुजरात में चलाऊँ या मध्य प्रदेश में चलाऊँ तो उस समय ये दीनबंधु सहयोग संस्था जो रजिस्ट्रेशन है उस राज्य में काम नहीं आएगी। यदि उनको कहीं शासक प्रशासन के साथ जुड़ के काम करना है तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहता है। तो जब हमारी जब संस्था काम करने लग गई तो फिर क्या है, मध्य प्रदेश और गुजरात के वॉलंटियर हमको कांटेक्ट करने लगे कि सर हमको भी ये संस्था अपने राज्य में स्टार्टअप करनी है। तो उस समय हमको समझ में आया कि अब तो हमारी जो संस्था का पंजीयन और छत्तीसगढ़ सोसाइटी एक्ट हुआ है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं चल सकती है, तो हमने सोचा कि हम एक सेक्शन 25 पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी हम लोग पंजीयन कराने, ताकि पूरा वर्ल्ड मतलब हम लोग नेशनल वाइज पे हम लोग कहीं भी किसी भी स्टेट पे हम लोग संस्था चला सके। तो ये धीरे धीरे हमको अनुभव आते गया कि एक्चुअल में संस्था की ये सब पंजीयन होती है, सब काम होती है। जी हाँ
जी सर, तो आज जो ये दीनबंधु है ये मुख्य किस विषय पे काम करता है, और अभी नए साल में आप लोगों ने क्या क्या नया करेंगे?
जो हमारे संस्था का मेन मुख्य उद्देश्य रही है वो तो जैसे कि समाज में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराना, ये हमारा मेन पहलू था हमारे संस्था का कार्यक्रम कराना है ना, क्योंकि हम सभी सभी बी फार्मेसी के स्टूडेंट रहे हमारे संस्था में अधिकतर, तो हम लोगों ने हेल्थ फील्ड पे फोकस करने का सोचा। तो इसके अंतर्गत हमारा मेन एक मुहिम था जो पूरे बिलासपुर में कोई संस्था काम नहीं करती थी, और वो काम ये थी कि मेडिसिन रिसाइकलिंग करना, डोर टू डोर घर में जाके जो किसी के घर में मेडिसिन रखी हुई हो जो अब यूटिलाइज नहीं हो रही है उनके घर में, तो ऐसे मेडिसिन को हम लोग कलेक्ट करते थे, और कलेक्ट करने के बाद उसमें हम लोग पृथककरण करते थे कि कौन सी मेडिसिन अच्छी है कौन सी मेडिसिन खराब है। तो जो मेडिसिन अच्छी है जिसका एक्सपायरी अभी लॉन्ग है तो ऐसे मेडिसिन को हम लोग छांट के उसको हेल्थ कैंपेन के थ्रू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा हम लोग किसी जरूरतमंद लोगों को बांटते थे। तो ऐसे में अच्छे क्वालिटी की एथिकल मेडिसिन लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाता था, उसके यूज का आ जाता था। अभी वहीं पे अधिकतर लोग को जानकारी नहीं रहती, तो जानकारी का भाव में उस मेडिसिन को ये नहीं सोचते कि वो मेडिसिन रखा है तो उसको हम लोग फिर से दोबारा यूज करिए, उनको लगता है कि अभी मेडिसिन एक्सपायरी हो गई है, या तो फिर कई लोगों को मेडिसिन की जानकारी नहीं रहती तो उस मेडिसिन को दोबारा यूज नहीं करते हैं, फिर से डॉक्टर के पास जाएंगे फिर से नई मेडिसिन लाएंगे फिर से खाएंगे, तो कुल मिला के वो मेडिसिन उपयोग में नहीं आती और उस मेडिसिन को हम लोग फेंक देते हैं। तो जब हम लोग इस ऊपर जब काम करना शुरू किया, क्योंकि कॉलेज के दिन में सिर्फ संडे को ही हम लोग खाली रहते थे, अब जब संडे को हम लोग डोर टू डोर मेडिसिन कलेक्ट करते थे तो हमको बल्क से बल्क मेडिसिन इकट्ठा हो जाती थी एक ही कॉलोनी में, तो हम लोगों ने सोचा कि कहीं हम लोग पूरा बिलासपुर के हर एक कॉलोनी में कहीं मेडिसिन इकट्ठा करना शुरू करे तो न जाने कितने सारे मेडिसिन इकट्ठा हो जाएगी, और वही मेडिसिन नगर निगम के गाड़ी में जाके वो फेंकाता है कहीं, और इससे हमारे मिट्टी भी प्रदूषित होते हैं, दवाओं को फिर भूखे के वजह से जो मवेशिया है पशु मवेशी बिलासपुर के उन लोग भी खाते थे, इसकी वजह से उनका स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आती थी, तो बहुत कहीं न कहीं से समस्याएं आती थी एनवायरमेंट पे। अब उस मेडिसिन को हम लोग अच्छे ढंग से हम लोग जब काम करते थे तो इसमें एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी बच जाता था और साथ साथ में किसी जरूरतमंद व्यक्ति का काम आता था, तो ये काम हमको बहुत अच्छा लगा और लोग बहुत इंस्पायर भी हुए, बहुत हमको हेल्प भी किए, तो ये मेन हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि फुटपाथ में आश्रित निर्धन वृद्धों को स्वरोजगार दिलाने में सहायता व युवाओं के लिए स्वरोजगार संबंधित सलाह का शिक्षा कार्यक्रम कराना, एकल परिवार के रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम कराना, बाल शोषण रोकथाम हेतु विद्यालय महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराना, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के अभियानों को सुचारू रूप से सफल बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराना, युवाओं में हो रहे थे धूम्रपान को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना, ये सब हमारा ऑब्जेक्टिव था।
सर इतनी सारी चीजें आपने बताई और काफी अच्छे विषय पे अच्छे अच्छे कदम आप ले रहे हैं, अच्छे की ओर आप अपने कदम बढ़ा रहे हैं। सर इस नए साल में आपने कुछ नया क्या सोचा है कि आप क्या करेंगे?
इस नए साल में मेरा प्रयास और मेरी पूरी संस्था का प्रयास रहेगा कि जो आज के समय में जो शिक्षा व अभाव के या निर्धनता के अभाव की वजह से जो हमारे देश में भिखारियों की संख्या में जो वृद्धि होती जा रही है, आप कभी आप बिलासपुर की किसी भी कॉलोनी में या किसी भी कस्बे में निकल के देखेगा कि आप कहीं भी जाओ तो एक ना कोई भिखारी आपको दिख जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो भिखारियों की जो संख्या हर जगह बढ़ रही है और उस भिखारियों के लिए कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन या तो कोई गवर्नमेंट ऐसे कोई काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से लोग भी चाहते जा रहे हैं भिखारी की, हमको तो ऐसे लोग मांग मांग के लोगों से पैसा मिल जाता है करके उन लोग अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर हम लोग करने का सोच रहे हैं। पीछे एक आंकड़ा में 2015 के अगस्त में राज्यसभा सरकार ने एक आंकड़ा पेश किया था जिसमें भिखारियों की संख्या महज लगभग 4,13,670 की जनसंख्या थी और जिनमें 2.5 लाख पुरुष की संख्या थी और 1,90,000 के आसपास कुछ महिलाओं की संख्या। तो भारत में जो भिखारियों की संख्या अब 4 लाख से अधिक हो चुकी है। ऐसे में हम जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसको एक पहल लेनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट भी इसमें अच्छा काम कर सके। तो नए साल में मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो भिखारियों जो दर बदर जो संख्या बढ़ती जा रही है उनको हम लोग कुछ प्रेरित कर सके, उनमें जागरूकता फैला सके ताकि अपने साथ साथ अपने बच्चों को जो भविष्य खराब करे वो खराब न करे, उनको भी एक अच्छा शिक्षा मिले, एक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पोशाक मिले, इनके ऊपर हमारी संस्था कार्य करने वाली है नए साल में।
जी सर बहुत ही अच्छी सोच है आपकी और बहुत ही अच्छे चीजों के लिए आप काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और आगे के कामों के लिए भी हम चाहेंगे कि जो पूरे बिलासपुर वासी हैं वो सभी आपके साथ मिलकर आपका सहयोग करें और बिलासपुर को एक बेहतर जगह बनाए और देश को भी एक बेहतर जगह बनाए।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपके इस प्रेरणामय बातों के लिए। तो बिल्कुल हम कोशिश करते रहेंगे कि बिलासपुर और अन्य जो जिले हैं जहाँ जहाँ हमारी संस्था चलती है वहाँ हम बेहतर प्रयास कर सके, बेहतर उद्देश्यों के साथ काम कर सके ताकि ज्यादा से ज्यादा जो जरूरतमंद लोग हैं उनको इससे मतलब लाभान्वित मिल सके। थैंक यू सो मच मैम।
तो कैसा लगा आपको इतने सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं यानी कि हमारे सोशल वर्कर की बातें सुनकर, सोशल वर्कर की बातें सुनकर? और इन सभी की बातें सुनकर मेरा मन तो उत्साह से ओतप्रोत हो चुका है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस नए साल में मैं बिलासपुर के प्रति अपना योगदान दूं। और मुझे लगता है मेरे श्रोता साथी भी अभी यही सोच रहे होंगे कि वो भी अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और केवल अपने बारे में ना सोचकर पूरे समाज के बारे में सोचेंगे। और फिलहाल तो हम प्रयासरत हैं अपने बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाने में, लेकिन अपने बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पहले हमें खुद को स्मार्ट मूव लेना होगा और केवल अपने बारे में ना सोचकर सभी के बारे में सोचना होगा। तो चलिए अब वक्त हो चुका है अलंकृता का और गजर का आप सभी श्रोता साथियों से विदा लेने का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए अर्पण रेडियो। गजर की तरह ब्रिटिश अंदाज में अपनी आवाज के साथ बिलासपुर वासी,
बिलासपुरियंस की आवाज,
ये है आपका अपना अर्पा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अर्पा वेब रेडियो।
गजर की